गौर हरि बोल, गौर हरि बोल, गौर हरि बोल,
गौर हरि बोल,
गौर हरि बोल, गौर हरि
बोल, गौर हरि बोल,
गौर हरि बोल, गौर हरि
बोल, गौर
हरि हरि वाली है गौर हरि बोल, गौर हरि बोल,
गौर हरि बोल,
गौर हरि बोल, गौर हरि बोल,
गौर हरि बोल, गौर हरि बोल,
गौर हरि बोल, गौर हरि
प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर शिवासवि गौर भक्त वृंद
प्रभु नित्यानंद प्रियद्वैत गदाधर श्रीवासदे गौर भक्त वृंद बोलिए प्रभु नित्यानंद प्रियद्वैत गदाधर श्रीवासदे गौर भक्त वृंद हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम
हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
सावधूतं परिजन सहितं
कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्विता वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरिर्नाम हरिर्नाम हरिर्नामैव केवलं स्वलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरद्विजे नमः आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमाभदिव्यच्छवि सुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्रीअद्वैतगदाधरवसदि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओ जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानन्द
जय श्री चैतन्य
जय नित्यानन्द
जय अद्वैत
चन्द्र जय गौरभक्तवृन्द जय अद्वैत चन्द्र जय गौरभक्तवृन्द जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानन्द
चैतन्य जय नित्यानन्द
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानन्द
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानन्द
जय अद्वैत चन्द्र जय गौर भक्तवृन्द
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 जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानन्द
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 जय अद्वैत चन्द्र जय गौरभक्तवृन्द
जय अद्वैत चन्द्र
जय अद्वैत चन्द्र जय गौरभक्तवृन्द
जय
अद्वैत चन्द्र जय गौरभक्तवृन्द
जय
अद्वैत चन्द्र जय गौरभक्तवृन्द गौरभक्तवृन्द
Hare Krishna. गौर कथा का श्रवण सेवन करने हेतु आप सभी यहाँ उपस्थित गौर भक्तों का स्वागत है। कैसे भक्त आप बन रहे हो? कौन से भक्त? गौर भक्त। पांच सौ छब्बीस वर्ष अब कुछ ही दिनों में पूरे होंगे गौर आविर्भाव। गौर आविर्भाव भूमेस्त्वाम निर्देशा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम जगन्नाथाय ते नमः। जिस स्थान पर चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए उस स्थान का उस धाम का नाम मायापुर भी नाम किंतु वहां माया नहीं है। कभी कभी लोग जब मायापुर सोचते सुनते हैं तो मायापुर वन मायापुर में जो माया से परे है जो स्थान माया का स्पर्श भी जहां नहीं है कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार जहां कृष्ण तहार नहीं मायर अधिकार। ऐसा स्थान साइन नहीं लगाया क्या मोबाइल्स ऑफ करना वगैरह ऐसा कुछ? हरे कृष्ण दिस हैज टू स्टॉप ऑफ मोड में रखिए। ताकि माया का कॉल या नहीं पहुंच पाए। कृष्ण भक्त का कॉल भी हो सकता है लेकिन आप उनको ही आप यहाँ बुला सकते हो। अगर वे कृष्ण भक्त वो पहुंच जाएंगे पहुंचने चाहिए थे यहाँ पर। तो हुआ तो 526 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण भगवान पुनः प्रकट हुए। फिर उनका नाम वहां पर गौर भगवान हुआ। या कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्पृषे नमः। कृष्ण का नाम हुआ श्री कृष्ण चैतन्य। 5000 वर्ष पूर्व प्रकट हुए श्री कृष्ण। श्री कृष्ण चैतन्य नाम से प्रकट हुए। मायापुर नवद्वीप में जो बत्ती है ना ये जो पीछे देखो जो फ्लड लाइट ठीक है इधर देखिए वो नहीं वो बाहर वाली वो जो anyway, तो नवद्वीप, नवद्वीप में एक अंतरद्वीप है, या नवद्वीप मतलब नवद्वीप, उसमें जो मध्य में है उस द्वीप का नाम अंतरद्वीप। उस अंतरद्वीप में मायापुर नामक स्थान गंगा के तट पर, कीब जयो जयो गोरा चांदेर आरती के शोभा, जाह्नवी तट वने जग जन मन लोभा। तो जाह्नवी के तट पर, गंगा के तट पर मायापुर इस स्थान को अब या तब भी योगपीठ, भगवान के प्राकट्य स्थली का नाम योगपीठ। वहाँ भगवान प्रकट हुए और फिर उनकी कथाएं प्रारंभ होती है प्राकट्य के साथ, या फिर प्राकट्य के पहले भी कई इतिहास भी, उसका संबंध भी भगवान के साथ या भगवान के प्राकट्य के साथ जुड़ जाता है। ऐसे गौर कथा हरिभाव भगवान के गौर भगवान या श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की लीला तो शाश्वत लीलाएं हैं, और भगवान पुनः पुनः प्रकट होते हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, और हर समय वे नवद्वीप में ही प्रकट होते हैं। जैसे श्री कृष्ण हर समय कहाँ प्रकट होते हैं, वृंदावन में ही प्रकट होते हैं। ये हर समय प्रकट होने की बात नहीं सुनाएंगे आपको, ये क्या हर समय क्या होता है, हर समय ब्रह्मा के एक दिन में एक बार एक समय श्री कृष्ण प्रकट होते हैं द्वापर युग के अंत में, और उस द्वापर के बाद जो कलियुग आता है तो उस समय वे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं। तो गौर कथा कोई नई नहीं है, बारंबार इस समय गौरांग महाप्रभु 526 वर्ष पूर्व प्रकट हुए, तो उसके पहले कथा गौर कथा थी ही। हम अभी अभी नवद्वीप में नैमिषारण्य है, नवद्वीप में क्या है नैमिषारण्य, नवद्वीप में बहुत सारे धाम है ऑल इन वन, उसकी चर्चा देखते यथा संभव कर सकते हैं कभी। और पुष्कर भी नवद्वीप में है, कुरुक्षेत्र भी नवद्वीप में है, वाराणसी भी नवद्वीप में है, द्वारका भी नवद्वीप में है, वृंदावन के अरे बाबा वृंदावन के सारे वन, द्वादश कानन, मधुबन, तालबन, बहुला वन, वृंदावन, खादीर वन, काम्य वन इत्यादि इत्यादि द्वादश कानन नाम, जिसकी आप लोग कभी परिक्रमा किए होंगे, वो सारे वन भी वहाँ नवद्वीप में है। कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु में अगर भेद नहीं है और नहीं ही है, कोई भेद नहीं है, तो फिर कृष्ण का धाम वृंदावन धाम और गौरांग महाप्रभु का धाम नवद्वीप धाम, इसमें भी कोई भेद नहीं होना चाहिए और नहीं है। तो नवद्वीप की जब हम परिक्रमा करते हैं, कल ही हम आए वैसे नवद्वीप से ही सीधे आके यह गौर कथा सुना रहे आपको। और सारे नवद्वीप की परिक्रमा भी किए हम, इसमें केवल 6,000 भक्त साथ में चल रहे थे, तो यह तो खाली खाली सुना सुना सा लग रहा है, किसी रेगिस्तान में हम पहुंच गए। वह तो भक्तों का सागर नवद्वीप धाम, सभी पहुंचे हैं, चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव, 526 सवा आविर्भाव, गौर पूर्णिमा महोत्सव मनाने के लिए संसार के कोई 61 देशों के भक्त वहां आए हैं। और फिर हम यहां पहुंच गए, ना जाने क्यों हम यहां आ गए। तो हुआ, और जो वहां भक्त है मायापुर में, मायापुर फेस्टिवल मना रहे, संपन्न हो रहा है, इस्कॉन का 40th फेस्टिवल, 40वां उत्सव, 1972 में पहला उत्सव हुआ इस्कॉन का, और 72 से दिस 2012, तो ये 40वां उत्सव। तो पहला जब उत्सव मनाया जा रहा था तो मैं वहाँ नहीं था, कुछ केमिस्ट्री के परीक्षा दे रहा था बम्बई में, तो ये 40 में से वैसे एक फेस्टिवल मैंने मिस किया। फिर 73 से जाना प्रारंभ किया, तो फिर एक भी उत्सव मिस नहीं किया मैं। तो 39 मायापुर फेस्टिवल्स, 39 टाइम्स हम गए, वैसे बीच में भी कभी कभी बीच में जाते थे, अधिकतर गौर पूर्णिमा उत्सव में ही जाना होता है। और फिर कभी एक सप्ताह रहते हैं, कभी 2 weeks, इस समय तो लगभग एक महीना बीत गया, थोड़ा मैं ग्रैंड टोटलिंग करने का प्रयास कर रहा था, तो कभी एक साल एक सप्ताह, कभी 2 सप्ताह, कभी 3 weeks, ऐसा जोड़ेंगे तो हमने मायापुर में 2-3 साल तो बिताए हैं। सालों में 2-3 साल तो मायापुर में। तो मायापुर धाम की जाए, नवद्वीप धाम की जाए। तो हुआ, तो वहाँ उस मायापुर या नवद्वीप धाम में एक मध्य द्वीप है, मध्य द्वीप, एक सीमंत द्वीप है, पहला तो सीमंत द्वीप है, फिर गोद्रुम द्वीप है, नाम सुनते हैं हम लोग, फिर मध्य द्वीप है, तीसरा चौथा कोल द्वीप है वहां, फिर ऋतु द्वीप है, फिर जाह्नू द्वीप है, मोददरुम द्वीप है, रुद्र द्वीप और अंतरद्वीप, नौ हो गए शायद, हो गए। तो ये नवद्वीप में से एक मध्य द्वीप है, मध्य द्वीप में वहाँ नैमिषारण्य है। तो नैमिषारण्य में सुत गोस्वामी, नैमिषारण्य में जो लखनऊ के पास सीतापुर और वहाँ एक नैमिषारण्य जहाँ शौनकादि मुनियों को भागवत कथा और पुराणों की कथा, भागवत कथा भी सुनाए सुत गोस्वामी। तो नवद्वीप में जो नैमिषारण्य है वहाँ सुत गोस्वामी गौर कथा सुनाए, और उस गौर कथा के श्रवण के लिए कई सारे श्रोता ब्रह्मांड भर के, गौर कथा हो रही, गौर कथा हो रही, गौर कथा। तो उस कथा में साक्षात शिव जी भी आए या आना चाह रहे थे नंदी के पीठ पर बैठ के, लेकिन नंदी बैल की पीठ तो पीठ तो ठीक है, उसके स्पीड इट इज अबाउट 4 miles per hour, हम लोग पदयात्री है तो पदयात्रा में हमारा जो बैल है, या हो सकता नंदी थोड़े अभी मोर स्पीड, लेकिन कैलाश से उनको आना था नवद्वीप में गौर कथा श्रवण के लिए। तो उन्होंने जो प्रवास शुरू किया तो अनुभव कर रहे थे कि ये बैल तो इस स्पीड से जाएगा तो वहाँ की कथा तो समापन होगा, फिर पूर्णाहुति के समय शायद मैं पहुँच जाऊँगा। तो शिव जी को एक आइडिया आ गई, तो कैलाश से आते आते रास्ते में सत्यलोक ब्रह्मलोक, तो उन्होंने ब्रह्मा जी का वाहन स्वान, हंस वाहन उधार लिया, बैल को वही पार किया नंदी को, और हंस के फिर पीठ पर बैठ के बड़े तेजी से, तो जहाँ वो लैंडिंग हुआ उस हंस का, उस स्थान पर हम कुछ दिन पहले थे मध्य द्वीप में, तो उस स्थान को हंस वाहन कहते हैं। तो वहाँ हंस, वहाँ मूर्ति है हंस, तो वहाँ हंस, हंस वाहन, उसके पीठ पर बैठे हुए शिव जी, तो वहाँ उतरे, और फिर कुछ ही दूरी पर नैमिषारण्य जो नवद्वीप मायापुर में मध्य द्वीप में, वहाँ गए और शिव जी ने गौर कथा सुनी। ये बहुत समय पहले की बात है, 526 साल पहले की बात नहीं है, इसीलिए ने कहा कि गौरांग महाप्रभु तो कई बार बारंबार या ब्रह्मा के एक दिन में प्रकट हुए होते हैं, तो वो जो कथा सुने सुत गोस्वामी से कथा सुने शिव जी गौर कथा सुने, तो पहले कल्प में, पहले के कल्पों में गौरांग महाप्रभु की हुई कथा श्रवण किए। फिर हम गंगा के तट पर भी थे, कई बार गंगा को पार कर रहे थे हम, एक द्वीप से, द्वीप वह कैसे बने हैं, वहां कोई समुद्र तो नहीं है, तो वहां नदियां बहती है। फिर एक दिन तो हम लोग पंचवैनी के तट पर पहुंच गए, परिक्रमा करते 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 अब त्रिवेणी से परिचित हो आप, त्रिवेणी संगम तो प्रयाग में है, नवद्वीप में पंचवैनी है, फाइव रिवर्स, पांच नदियों का संगम, तो कई सारी नदियां वहां क्रिस क्रॉस बहती है। तो हुआ उसी से ये अलग अलग द्वीप आइलैंड्स बने हैं, तो नदी का जल बहता है, अलकनंदा कई बार, कई गंडकी है, कहा गंगा है, कई जमुना है, कई सरस्वती है। वहाँ तो वहाँ जो गंगा बहती है, आधी आधी नदी में गंगा है, दूसरी आधी नदी में जमुना है, गंगा जमुना साथ में बहती है। और स्थानों पर तो गंगा मुक्ति देती है, लेकिन मायापुर नवद्वीप की गंगा भक्ति देती है या प्रेम देती है, प्रेम प्रदायिनी गंगा जमुना और नदियां वहां। तो अधिक तो दर्शन या प्राकट्य गंगा का ही है नवद्वीप में। तो गंगा जब प्रकट हुई भगीरथ महाराज के प्रयासों से, या पहले गंगा तो स्वर्ग में ही बहती थी, स्वर्ग से लिमिटेड थी, लिमिटेड इन द हेवन, तो भगीरथ लाए पृथ्वी पर, गंगोत्री में पहुंच गई गंगा, फिर नीचे उतरी गंगा, भगीरथ आगे आगे जा रहे थे रथ में बैठ के, शंख ध्वनि करते हुए, तो गंगा पीछे पीछे आ रही थी, तो उस रथ के पहियों से वैसे गंगा का जो तट है उसकी खुदाई भी हो रही थी, और गंगा अपने जल से भर रही थी उस नदी के पात्र को। तो भगीरथ उत्तर प्रदेश बिहार होते हुए बंगाल में प्रवेश किए, फिर नवद्वीप में प्रवेश जब हुआ, उनका लक्ष्य तो गंगा सागर था, अपने पूर्वजों के मुक्ति के लिए भगीरथ गंगा को वहां तक ले जाना चाह रहे थे। तो नवद्वीप से वो गंगा सागर, गंगा जहाँ सागर को मिलती है, उस स्थान कुछ दूर नहीं था, तो गंगा जब पहुंची नवद्वीप में, तो गंगा ने शायद कुछ अनाउंसमेंट वगैरह सुनी होगी, अभी कुछ ही दिनों में गौर पूर्णिमा उत्सव होने वाला है। तो गंगा को जब पता चला, कुछ कुछ बैनर वगैरह पढ़ा होगा, तो गंगा ने सोचा कि अब मैं यहां से आगे नहीं बढ़ूंगी, जब तक उत्सव संपन्न नहीं होता तो मैं यही रहना चाहूंगी। तो भगीरथ जी तो आगे जा रहे थे, लेकिन पता चला कि पीछे मुड़ के गंगा पीछे नहीं आ रही है, तो यू टर्न करके गंगा के पास गए, तो क्या समस्या है, और स्थान तो दूर नहीं है जहाँ हमें पहुंचना था। तो गंगा ने कहा, मेरे प्रभु का जन्म दिवस, बहुत बड़ी बर्थडे पार्टी यह संपन्न होगी, कुछ ही दिन का मामला है, तो मैं उस समय सम्मिलित होना चाहते हूँ। तो गंगा वहाँ रह गई, फिर भगीरथ को भी रहना ही पड़ा, कई सारे विघ्न आ रहे थे, तो ये भी एक अंतिम विघ्न यहाँ भी आ गया, वहाँ तक पहुँची अभी कुछ 100 मील ही दूर जाना था, लेकिन गंगा के नहीं नहीं जब तक उत्सव नहीं होता तब तक नहीं जाओ। तो गंगा जहाँ रही उस स्थान का नाम गंगा नगर हुआ, आज भी वो गंगा नगर। तो गंगा रह गई और भगीरथ जी भी रहे। गौर पूर्णिमा के दिन दोनों ने उपवास किया, निर्जला एकादशी जैसे होती है, तो गंगा ने निर्जला उपवास किया। गंगा ने जल का बूंद भी नहीं पी वो गंगा। गंगा तो व्यक्ति भी गंगा है, जल भी गंगा, और उसका मूर्तिमान द पर्सोनिफिकेशन तो गंगा, उसका अपना वाहन भी है। उसके पीठ पर बैठ के गंगा के जल में ही फिर वो क्रोकोडाइल और उस पर बैठी हुई गंगा जा रही थी, तो वो सभी वहाँ रुके। और गौर पूर्णिमा उत्सव जब संपन्न हुआ तो फिर वो आगे बढ़े। तो कुछ 526 साल के बाद ये घटना नहीं घटी, ये बहुत पहले की घटना है। जब भी गंगा स्वर्ग से धरती पर उतरी या लाए भगीरथ, तब भी नवद्वीप था और तब भी गौर पूर्णिमा उत्सव मनाया जाता था। फिर कौन आ गए? मार्कंडे मुनि आ गए। आपने सुना पढ़ा होगा उनको वरदान मिला 7 कल्पों तक जीते रहो। तो संसार का कुछ आंशिक प्रलय भी हुआ करता था, तो संसार का आंशिक विनाश होता था, लेकिन उनको वरदान होने के कारण वो जीते रहते हैं। उस प्रलय से उनका कोई बिगाड़ नहीं होता, लेकिन वैसे उनके लिए बड़ी समस्या, सर्वत्र सारा ब्रह्मांड जलमय जलमय, सर्वत्र जल, और बस उसकी लहरें तरंगे उसे फेंके जाते हो तरंगों के साथ, यहां से वहां, वहां से, कभी डूबते तो कभी, बड़ा बुरा हाल हो रहा था मार्कंडेय मुनि को, मुनि का। कभी बेहोश होते थे, कभी थोड़ा सा बाह्य ज्ञान होता उनको, तो खोजते कोई स्थान है, अरे कोई है, सर्वत्र देखते कोई व्यक्ति है, कोई स्थान है, कोई आइलैंड है, कोई जहां मैं किनारे आ सकता हूं, किससे मिल सकता हूं, हेल्प 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 हेल्प। तो सारे ब्रह्मांड में उनका भ्रमण हो रहा था, अकेले ही पूरे ब्रह्मांड में बस अकेले ही जीवित है। तो खोजते 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 एक स्थान पर उन्होंने उनको एक वटवृक्ष दिखाई पड़ा। पास में आते तो भगवान ने उनको विशेष दर्शन भी दिया। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम, वटवृक्ष के एक पत्ते पर एक छोटा सा बालक, सावला सलोना बालक लेटा हुआ उन्होंने देखा। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयंतम। बालक ने क्या किया था, अपने करार अविंद, अपने दयने हाथ से जो कर कमल से अपना चरण कमल पकड़ के फिर मुख में मुख मंडल या मुख मैं उसको चूस रहा था। करार अविंदे न पदार अविंदम, मुखार अविंदे मुख अरविंद से चूस रहा था। अरे संसार के संत महात्मा जो मेरे चरणों की आराधना करते हैं, शायद मेरे चरण कुछ विशेष या मीठे तो नहीं है, क्या वैशिष्ट है मेरे चरणों का। सभी का ध्यान मेरे चरणों में होता है। तो भगवान आस्वादन करें अपने चरणों का। बालम मुकुंदम मनसा स्मरामी, ऐसे बाल मुकुंद का कौन स्मरण या दर्शन कर रहे वा? मार्कंडेय मुनि। तो धीरे धीरे उनको पता चला कि यह वट वृक्ष भी है, तो नीचे उतरे वहा, तो उस वृक्ष के नीचे सुरभी गाय उनको मिली, से संवाद हुआ, बहुत थके थे, गाय ने दूध पिलाया और धीरे धीरे उन्हें दर्शन किया कि वो स्थान सारे ब्रह्मांड में एक स्थान बचा था और वो था नवद्वीप धाम। परस्तस्मात् भाव अन्य व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः, जिसे भगवान गीता में कहे श्री कृष्ण भगवान, मेरा धाम कैसा है, व्यक्तो व्यक्तात्। ये संसार कभी व्यक्त होता है, सृष्टि होती अव्यक्तात् या फिर उसका प्रलय होता है, मेरा धाम व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः। तो उन मायापुर नवद्वीप धाम सनातन धाम है, शाश्वत धाम है। ये संसार के ब्रह्मांड के सृष्टि और प्रलय से कोई संबंध नहीं है। जिस धाम का उस धाम नवद्वीप धाम की। और ये सब वृंदावन को भी लागू होता है, वृंदावन और मायापुर। तो वृंदावन का महात्म्य तो हम लोग सुनते पढ़ते हैं, लेकिन ये अब गौर कथा हो रही है तो ये एडिशनल, ये अधिक ज्ञान या जानकारी, या पहले हमको कृष्ण ही पता थे, चैतन्य महाप्रभु को पता ही नहीं था। हम भी जब 40 वर्ष पूर्व चैत श्रील प्रभुपाद के संपर्क में आए, जो श्रील प्रभुपाद क्या कर रहे थे, गौरवाणी प्रचारिणे नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी गौरवाणी या गौर कथा, और तो उन्होंने गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे, तो पाश्चात्य देश की यात्रा भ्रमण व गौरवाणी का प्रचार करके श्रील प्रभुपाद भारत लौटे, तो फिर हमारी भी मुलाकात हुई श्रील प्रभुपाद के साथ 41 साल पहले ऐसे। वही साहब आपको हो गया, अभी 39 साल की बात हो रही थी, अभी 41, अब नहीं बताएंगे उसका क्या रहस्य है, लेकिन है ये ऐसा ही, ये संख्या तो सही है। तो 41 साल पहले हम भी नहीं जानते कि ये चैतन्य महाप्रभु साक्षात श्री कृष्ण है, या श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, ये बातें तो हमको पता नहीं थी। इन श्रील प्रभुपाद की कृपा से जिन्होंने गौरांग महाप्रभु के लीलाओं को प्रकाशित किया और नवदीप धाम का एड्रेस दे दिया संसार को, गौरांग महाप्रभु के नाम रूप गुण लीला का वर्णन सुनाया, और जिनको जिनको भगवान का नाम मिला फिर वो नाम लेके गौरांग महाप्रभु के धाम पहुंच गए और फिर उत्सव भी शुरू हो गए। 66 में तो फाउंडेशन हुआ हरे कृष्ण मूवमेंट का, तो पहले कोई 4-5-6 साल तो इस्कॉन की ओर से उत्सव नहीं होते थे, फिर प्रभुपाद अधिकतर विदेश में ही समय बिताते थे। लेकिन जब वे आए 71 में, श्रील प्रभुपाद आए तो 72 में उन्हें उत्सव शुरू किया। तो श्रील प्रभुपाद फाउंडर आचार्य ऑफ केवल हरे कृष्ण मूवमेंट ही नहीं, ये हरे कृष्ण मायापुर फेस्टिवल के फाउंडर आचार्य भी श्रील प्रभुपाद। तो उन्होंने धाम का परिचय दिया, केवल गौरांग महाप्रभु ऐसे ही लुक्स लाइक दिस ऐसा ही नहीं कहा, लेकिन हम लोग सब कुछ जानते हैं या शास्त्र में सारी जानकारी है भगवान के संबंध में। श्रील प्रभुपाद कहा करते थे, वी नो हिज एड्रेस और वी नो क्या इज फादर मदर, जय सचिनंदन जय सचिनंदन जय सचिनंदन गौर हरि। तो सचिनंदन जो नंद नंदन थे वही बन गए सचिनंदन, नंद नंदन जय सची सुत होइल सही बलराम होइल निताय। फिर इस प्रकार केवल श्री कृष्ण ही नहीं प्रकट हुए, बहुत अद्भुत कथाएं बातें हैं, केवल अकेले कृष्ण नहीं प्रकट हुए बलराम प्रकट हो गए। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। वैसे सारा संसार आध्यात्मिक संसार, आध्यात्मिक संसार है, आध्यात्मिक जगत है, आध्यात्मिक साम्राज्य स्पिरिचुअल किंगडम है। तो सारा किंगडम केवल किंग ही नहीं, सांगो पांगास्त्र पार्षदम सांग सांग स अंग उपांग पार्षदों के साथ भगवान प्रकट हो गए। तो केवल कृष्ण ही नहीं प्रकट हुए, बलराम होइल निताय, फिर बलराम बन गए नित्यानंद प्रभु। तुम लोग गौर निताय जो हम कहते हैं वृंदावन में, कहते कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम। तो इस्कॉन के मंदिर में जाइए, और भी कुछ कृष्ण बलराम मंदिर है लेकिन मुख्य तो कृष्ण बलराम मंदिर वृंदावन में, इस्कॉन का कृष्ण बलराम टेम्पल। तो वृंदावन में कृष्ण बलराम और मायापुर में वही कृष्ण बलराम कौन बने, गौरनीताय जय गौरनीताय गौरनीताय गौरनीताय, यह भी गौरनीताय है। ये केवल राधा गोविंद मंदिर ही नहीं है, ये कौन सा मंदिर है, ये गौरनीताय मंदिर भी है। दर्शन कीजिए, जिनकी कथा हो रही है उनके चरणों में बैठ के ही हम उनकी कथा कहने का कुछ प्रयास हो रहा है तो वह तो महाविष्णु प्रकट हो गए अद्वैताचार्य एक भक्त रूप श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और तो भगवान प्रकट हुए लेकिन वो भक्त का रूप धारण किए और प्रकट हो गए। तो भगवान को समझना और भी कठिन, भगवान को समझना वैसे भी कठिन, और फिर भगवान जब भक्त बन जाते हैं तो फिर हम लोग फिर अपराध भी कर बैठते हैं या फिर ऐसे संत तुकाराम हुए महाराष्ट्र में ऐसा प्रचार होता है, नरसिंह मेहता हुए गुजरात में, मीराबाई हुई राजस्थान में, और यूपी में कौन हो गए, तुलसीदास हुए, तो बंगाल में कौन हो गए, चैतन्य महाप्रभु, ऐसा प्रचार होता था। तो 41 साल पहले हमने ऐसा प्रचार सुना था, वो प्रचार अब भी थोड़ा चालू है ही, उसको धीरे धीरे उसको फुल स्टॉप, उसमें कुछ 5-10 हजार साल बीतेंगे पूरा फुल स्टॉप के लिए, पूरा जो अपराध या ज्ञान जो है। तो चैतन्य महाप्रभु भगवान है, बने कौन, भक्त बन गए, भक्त अवतार। चैतन्य बन गए भक्त रूप, भक्त स्वरूप। तो चैतन्य महाप्रभु बन गए भक्त रूप, और नित्यानंद प्रभु बन गए भक्त स्वरूप, और भक्त अवतार बन गए अद्वैताचार्य, और भक्ताख्यम बन गए श्रीवास, और भक्त शक्तिकम बन गए गदाधर, और सारे गौर पंचतत्व। तो मायापुर में जहाँ से अभी हम आए हैं वह पंचतत्व टेम्पल है, पंचतत्व पांच तत्व, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैता, गदाधर, श्रीवास। तो श्रीवास है नारद मुनि, तो पांचों की आराधना पंचतत्व। फिर चैतन्य भागवत भी है, कृष्ण जैसा ही धाम है नवदीप धाम, तो हुआ तो कृष्ण जैसा ही है श्री कृष्ण चैतन्य। तो श्री कृष्ण का फिर भागवत कथा श्री कृष्ण की है, तो फिर चैतन्य महाप्रभु की भी कथा होनी चाहिए, उसको तो यहाँ हम गौर कथा कह रहे हैं। उसका चैतन्य भागवत कथा भी है, ये ग्रंथ चैतन्य भागवत श्रीमद् भागवत चैतन्य भागवत, तो चैतन्य चरितामृत, या फिर चैतन्य मंगल, फिर चैतन्य चरित, कई सारे ग्रंथों में चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं का वर्णन है। कृष्ण लीला भागवते कहे वेद व्यास, चैतन्य लीला र व्यास वृंदावन दास। तो कृष्ण लीला के व्यास श्रील व्यास देव व्यास मुनि, उन्होंने रचना की कृष्ण लीला की। तो चैतन्य लीला के व्यास है वृंदावन दास। तो साक्षात श्रील व्यास देव ही जिन्होंने भागवत और अन्य पुराणों की भी रचना की, उन्होंने रचना की, चैतन्य भागवत की रचना की। तो कृष्ण जब कृष्ण चैतन्य बने तो व्यास बने वृंदावन दास, और उन्होंने चैतन्य लीला की रचना की। और इस प्रकार के कई सारे, एक छोटा ग्रंथ ही है चैतन्य क्या, उसमें लिखा है कृष्ण के समय जो जो कृष्ण के पार्षद थे वृंदावन में, वो नवद्वीप में कौन बने, इसकी एक सूची है। गौर गणोदेश दीपिका का नाम, गौर गणोदेश दीपिका। मनुष्य चरिते नारे अच्छे ग्रंथ धन्य वृंदावन दास मुखे वक्ता श्री चैतन्य। तो कोई साधारण मनुष्य तो ऐसे ग्रंथ की रचना नहीं कर सकता, तो साक्षात व्यास प्रकट हुए और उन्होंने रचना की। हरे कृष्ण 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 हरे राम थोड़े थक गया आप, दे वर्किंग वेरी हार्ड, ये आपको डबल शिफ्ट हो रही है, तीन बार शिफ्ट करके नाइट शिफ्ट में आप। हरी शिव जी जब वह आए गौर कथा में तो केवल दूसरी कोई शिफ्ट नहीं करते थे, वो केवल अहर्निश गौर कथा का श्रवण। जिस श्रवण से गौरांगेर मधुर लीला जार करने प्रवेशिला निर्मल हृदय भेलो तार। ये फल है गौरांग महाप्रभु की लीला। गौरांगेर लीला कैसी है, मधुर लीला, जार करने प्रवेशिला, फिर कर्ण से हृदय तक, तो हृदय निर्मल भेलोतार। इसका हृदय कैसा होगा, निर्मल होगा, निर्मल, माया का मल या कलिमल, कलिमल हरि, कलि का जो मल है उसको हरण करने वाली ये गौरांग महाप्रभु की कथाएं हैं। पशुपाखी झूरे पाषाण बीदरे सुनी जार गुण गाथा। पशुपाखी, पशु और पक्षी भी क्या करते हैं, झूरने लगते हैं, मग्न होते, तल्लीन होते हैं, वे जब क्या करते हैं, सुनी जार गुण गाथा। इस गौरांग महाप्रभु की गुण गाथा जब पशु पक्षी सुनते हैं तो पशु पाखी झूरे पाषाण बिदरे, पाषाण भी पिघल जा, ऐसी कथा ऐसी लीला। पशु पाखी चैतन्य महाप्रभु ने झारखंड के वन में पशु पक्षियों को, पागल हो गए सब पशु पक्षी, पागल हो गए महाप्रभु के दर्शन से, संग से, सानिध्य से। और महाप्रभु के साथ वे भी नृत्य करने लगे और वे कीर्तन करने लगे। ऐसे अद्भुत लीला। पशु भूल गए कि वे पशु है, उनका पशुत्व नहीं रहा, रास्ते में किसी पशु को बाघ को चैतन्य महाप्रभु क्या कहते, ए उठो, तो बाघ उठता, ओके व्हाट इज नेक्स्ट, उठ तो गया मैं, अब आगे क्या आदेश है, नाचो, तो आगे का पैर उठा के, ओके मैंने पैर ही उठाया, व्हाट नेक्स्ट, बोलो रीवो, तो बाघ भी क्या करता, हरी बोल कहता। नॉर्मली जो बाघ या सिंह अपनी जो गर्जना है वो बोली भूल गए, और वहां के सारे पशु और बाघ के साथ साथ में हिरन साथ में चलने लगे, रबिंग द शोल्डर्स, एक दूसरे को कंधे को कंधा मिलाते हुए, ये जान के कि नेक्स्ट डोर ये बाघ है, लेकिन कोई चिंता नहीं थी, कृष्ण है वहा चैतन्य, बाघ क्या कर सकता। तो बाघ ने भुला दिया बाघ को कि वो बाघ है, और हिरन भी भूल गया कि वो मैं हिरन हूं। तो झूंड के झूंड पशु, जैसे चैतन्य महाप्रभु जा रहे झारखंड, अभी जो झारखंड जो स्टेट बना हुआ उस झारखंड की बात कर रहे हैं, 500 वर्ष पूर्व जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से वृंदावन जा रहे थे, तो उस झारखंड जंगल में चैतन्य महाप्रभु ने वहां के पशुओं को उनसे संकीर्तन, चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन आंदोलन की स्थापना करने आए, तो पशु पाखी झूरे पशु पक्षियों के समाज में उन्हें संकीर्तन का प्रचार किया, चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि बाघ और हिरन साथ में चल रहे हैं, एक समय उन्होंने देखा कि एक दूसरों को वे आलिंगन दे रहे हैं, आलिंगन देने वाली पार्टी कौन, एक तो बाघ और दूसरा हिरन, द नेक्स्ट थिंग किसिंग ईच अदर, चुंबन, आलिंगन के बाद चुंबन भी जब किया, तो महाप्रभु ने, महाप्रभु जा रहे थे वृंदावन की यात्रा में, लेकिन महाप्रभु की यात्रा सफल हो गई, महाप्रभु ने सोचा मैं तो वृंदावन पहुंच गया, ये जो दृश्य है जहां पशु पशुत्व को भूलता है, या वृंदावन में पशु, वृंदावन के पशु भी भक्त है, ये ओरिजिनल वृंदावन जो आदि मूल वृंदावन जो है वह तो सभी भक्त है, तो महाप्रभु जा रहे थे वृंदावन, लेकिन आधे रास्ते में उन्होंने ये दृश्य जब देखा, ऐसे मैत्री का व्यवहार देखा, एक भक्त टाइगर एंड भक्त डियर, तो भक्त, तो महाप्रभु वृंदावन धाम की, मैं तो वृंदावन पहुंच, दिस इज वृंदावन, यही है वृंदावन, भक्त गोष्ठी सहित गौरांग जय जय, तो वृंदावन दास लिखते हैं या आदि खंड के द्वितीय अध्याय में, जय हो, किसकी जय हो, भक्तों की, गौर भक्तों की जय हो, गौरांग महाप्रभु का अपने भक्तों के प्रति बड़ा बड़ा ही स्नेह, बड़ा ही प्रेम। भज गौरांग कह गौरांग लह गौरांगेर नाम रे, जे जन गौरांग भजे सही अमार प्राण रे। ऐसे भजन क्या करो, बोलो गौरांग, बोलो भज गौरांग कह गौरांग लह गौरांगेर नाम, गौरांग का नाम लो, गौरांग को भजो। जे जन गौरांग भजे, और जो लोग गौरांग को भजते हैं वे हमारा मेरे प्राण है, प्राणों से भी प्रिय है वे भक्त जो गौरांग महाप्रभु के भक्त है। काली दुर्गा के नहीं है और भी, लेकिन गौरांग के भक्त जो है सही हमार प्राण रे। पुनः भक्त संगे प्रभु पदे नमस्कार, स्फुरक जिह्वाय गौरचंद्र अवतार। तो वे जब इस ग्रंथ की रचना कर रहे तो लिखते हैं, मेरा पुनः पुनः गौरांग महाप्रभु के चरणों में नमस्कार। वे गौरांग महाप्रभु में स्फूर्ति दे ताकि हमारे जिह्वा पर गौर कथा का प्राकट्य हो। गौरचंद्र अवतार जय जय श्री करुणा सिंधु गौरचंद्र, जय जय श्री सेवा विग्रह नित्यानंद। तो गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु दोनों वृंदावन में जैसे वे साथ में रहे, तो वृंदावन में तो एक साल के बाद या बलराम प्रकट हुए, फिर एक साल के बाद वे सातवें पुत्र थे, आठवां पुत्र श्री कृष्ण एक साल के बाद जन्मा। तो फिर कृष्ण जब जन्मे तो सीधे गए गोकुल जहाँ बलराम वहाँ थे, एक वर्ष के थे। तो कृष्ण बलराम का प्रथम मिलन जब वृंदावन में गोकुल में हुआ तो वह बलराम एक साल के थे और कृष्ण एक रात के थे कि उसी रात को ले गए। तो लेकिन गौर लीला में नित्यानंद प्रभु, यहाँ पर भी नित्यानंद प्रभु बलराम होइल नताय, नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए, दूसरा स्थान है राढ़ देश, कहते राढ़ देश जो बंगाल में ही है, तो राढ़ देश में नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए। और बलराम ने जैसे यात्रा की थी, भारत की यात्रा की थी, आपको याद है कि नहीं याद, जब कृष्ण जब कुरुक्षेत्र में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र पार्थ सारथी, पार्थ के सारथी बने थे, वहां थे कुरुक्षेत्र में कृष्ण, लेकिन बलराम उस समय यात्रा में गए, सारे भारत की यात्रा की। तो वही बलराम जब नित्यानंद प्रभु बलराम होइल नीताय, तो फिर नित्यानंद प्रभु ने भी यात्रा की है, सारे भारतवर्ष की यात्रा की। और यात्रा करते करते वे जब वृंदावन पहुंच गए तो उनको पता चला कि कि नवद्वीप में कृष्ण प्रकट हुए हैं, तो उन्होंने यात्रा वही और कहीं आगे और तीर्थों में नहीं गए, सीधे वृंदावन से नित्यानंद प्रभु नवद्वीप गए। और गौर नित्यानंद का पहला मिलन वह नवद्वीप में हुआ, जब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु होंगे कुछ 20 साल के होंगे और नित्यानंद प्रभु कुछ 32-1 साल के हों। तो वह एक नंदन आचार्य भवन करके हैं, वहाँ पर भी हम कुछ दिन पहले वहाँ पर थे। वह गौर निताय मंदिर है या पहला मिलन हुआ चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का। तो वह उस पहले मिलन का भी बड़ा अद्भुत वर्णन है, कैसे चैतन्य महाप्रभु ने भेजा हरिदास और श्रीवास को, जाओ कोई महापुरुष ने प्रवेश किया है नवद्वीप में, जाओ खोजो। तो दोनों मिलके वो खोज रहे थे सारे नवद्वीप में, प्रातःकाल से सायंकाल तक ढूंढे खोजे, लेकिन ऐसा कोई मिला तो नहीं। तो लौट के जो रिपोर्ट किए गया, कोई नहीं मिला कोई महापुरुष, हम बहुत खोजे सर्वत्र खोजे। तो फिर चैतन्य महाप्रभु कहे, फिर मुझे ही जाना होगा, मुझे ही खोजना होगा। तो चैतन्य महाप्रभु सीधे गए नंदन आचार्य के भवन पर, किसे पूछा नहीं, नो इंक्वायरी, इन यू, वो जानते थे। तो द्वार जब खुला तो सामने नित्यानंद प्रभु, वो पहली मुलाकात, फर्स्ट टाइम देख रहे। तो एक दूसरों की ओर ऐसे दौड़े और ऐसा आलिंगन उन दोनों का, और फिर रोमांचकारी वो मिलन। वो स्थान भी इस्कान का जो कैंपस, मायापुर चंद्रोदय मंदिर, इस्कान का जो मंदिर है उस मंदिर का नाम श्री प्रभुपाद रखे मायापुर चंद्रोदय। मायापुर तो मायापुर, मायापुर में चंद्रोदय, चंद्र का उदय, कौन से चंद्र का, गौर चंद्र का, गौर चंद्र का उदय हुआ। वैसे चैतन्य महाप्रभु चंद्र है तो नित्यानंद प्रभु सूर्य है, ऐसा नित्यानंदो सहोदितो गौड़ोदये पुष्पवंतो चित्रोषम दो तमोनुदो। पुष्पवंतो मतलब चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, एक सूर्य है दूसरे है चंद्रमा, दोनों भी गौड़ देश के क्षितिज पर प्रकट हुए। और फिर जब मुलाकात हुई तो नवद्वीप मायापुर में वे साथ रहे, और आगे फिर ऐसे जगन्नाथपुरी राधा गोविंद देव घी जाए। धर्म पराभव होयो जखने जखने अधर्मेर प्रबलता बाढ़े दिने दिने। तो हुआ तो द्वापर समाप्त हुआ, तो उसी के साथ कलयुग प्रारंभ होता है। और कलयुग बाहर बच्चे भी है, खेल भी शांति से खेल खेल सकते, लेकिन नहीं खेलेंगे वो। बालक जो है तो कलौ सत्व हरम पुंसाम, कली क्या करता है, सत्व हरम पुंसाम, पुम मतलब मनुष्य, नर नारी दोनों को मनुष्य, तो सभी की जो सात्विकता है उसको चोरी करता है, हर लेता है ये कलयुग। और फिर सत्वगुण नहीं रहा तो फिर दो गुण बच जाते हैं। गुण तो कितने हैं, कुल गुण तो कितने हैं, तीन ही है, गुण तो तीन ही है, सत्वगुण रजगुण और तमोगुण। तो कलियुग के साथ सत्वगुण समाप्त और थोड़ी सी राजसिकता और अधिकतर तामसिकता, अधिक तमगुण। इसीलिए अधिकतर जो जनता है कलियुग की कैसी रहेगी, कलौ शूद्र संभवः, ये हमारा परिचय है कलियुग के मनुष्यों का परिचय क्या है, कलौ शूद्र संभवः। ये गुणों के अनुसार होता है, गुणों के अनुसार वैसे चार युग भी बनते हैं, सत्य त्रेता द्वापर कलि। सत्य युग में सत्वगुण की प्रधानता, तो त्रेता युग में सत्वगुण थोड़ा कम होता है, रजगुण आ जाता है, थोड़ा सा किंचित सा तमोगुण भी। फिर द्वापर युग में और सत्वगुण घट जाता है, रजगुण और तमोगुण। फिर जब कलयुग में आते हैं तो सत्वगुण तो समाप्त ही हो जाता है, सत्व हरम पुंसाम, और थोड़ी सी राजसिकता और काफी तामसिकता। तो इसी के जैसे चार युग बनते हैं, चार युगों के अलग अलग गुण होते हैं, तो जो चार वर्ण है, चार वर्ण है मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये चार वर्णों का संबंध भी गुणों के साथ है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, भगवान का है, गुण कर्म विभागशः, मैंने विभाजन किया समाज का, कैसे, गुण कर्म विभागशः, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, मैंने सृष्टि बनाई चार वर्णों की। तो ब्राह्मण कौन, ब्राह्मण फिर सत्वगुणी है तो ब्राह्मण है, और फिर तो शूद्रों का गुण तमोगुण। तो कलौ शूद्र संभवः, गीता में पूरा अध्याय है जिसमें ये तीन गुणों का सारा निरूपण किया हुआ है, इसको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। वैसे तीन गुण होते क्या है, ये सारा संसार वैसे तीन गुणों का खेल है कहिए, या तीन गुणों का अलग अलग मिश्रण है, सारी प्रक्रिया है, सब तीन गुण, थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। तो तो बनना तो गुणातीत है हमें, तो कृष्ण भक्त या निर्मल, निर्मल हृदय भेलोतार, ये गौरांग महाप्रभु की मधुर लीला का श्रवण करो तो क्या होगा, निर्मल हृदय, निर्मल होगा मतलब ये तीन गुण का भी मल है, सत्वगुण वो थोड़ा कम मलिन है, लेकिन मलिनता या बंधन सत्वगुण से भी आ जाता है, और रजगुण से भी आता है और तमगुण से और मलिनता आ जाती है। तो हम निर्मल होंगे जब गौरांग महाप्रभु की निर्मल कथा, गुणातीत कथा का श्रवण करेंगे। तो यह तबे चतुर साधु जन रक्षा दुष्ट विनाश कारणे। तो भगवान क्यों प्रकट होते हैं? तो परित्राणाय साधुना। तो यह वही व्यास अब वृंदावन दास लिख रहे, साधु जनों की रक्षा दुष्ट विनाश कारणे। तबे प्रभु युग धर्म स्थापन करी थे, और भगवान धर्म संस्थापनार्थाय प्रकट होते हैं। सांगोपांगे अवतीर्ण हन पृथ्वीते, अपने सांग उपांग पार्षदों को परिकरों को लेके भगवान इस समय प्रकट हो रहे। वैसे ऐसे भी अवतार है जैसे मत्स्य अवतार है, बस वो अकेले ही है, या कुर्म अवतार है अकेले ही आ गए, नरसिंह अवतार है। लेकिन जब ऐसे ऐसे जब राम आए तो थोड़े अपने कुछ परिकरों के साथ आ गए, कृष्ण आए, फिर चैतन्य महाप्रभु आ रहे हैं। सांगोपांगास्त्र पार्षदम, अपनी सारी पूरी अपने जगत की जो टीम है सबके साथ वो सभी प्रकट हुए, सभी अवतार ले रहे हैं, केवल एक एक व्यक्ति का अवतार नहीं हो रहा है। तो इसका उल्लेख यहां सांगो पांगे अवतीर्ण होना। कलियुग धर्म हय हरि संकीर्तन, पहले ही बताया जा रहा है, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी। तो कलियुग का धर्म है नाम संकीर्तन, और जब भी कलियुग आता है तो उसका धर्म, उस कलियुग में कौन सा धर्म होता है? नाम संकीर्तन होता है। हर कलियुग में अलग अलग धर्म नहीं होता, हर कलियुग में संकीर्तन धर्म। तो उसकी स्थापना के लिए भगवान गौर भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो रहे हैं। कीर्तन निमित्त गौर चंद्र अवतार, स्पष्ट किया, कीर्तन निमित्त, कीर्तन की स्थापना के लिए। कलियुगे सर्वधर्म हरि संकीर्तन, सब प्रकाशे लेन चैतन्य नारायण। जैसे गौर नारायण हर युग हर कलियुग में गौर नारायण, लेकिन कृष्ण जब प्रकट होते, जिस द्वापर युग में श्री कृष्ण प्रकट होते, इसके बाद में जो कलियुग आता है उसमें श्री कृष्ण चैतन्य मां। तो एक रूप है गौर नारायण, लेकिन ये कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य बन जाते हैं भगवान। ऐसे कल कृष्ण के बाद आने वाला जो कलयुग है। की अनंत की शिव की विरिंच ऋषिगण, यत अवतारेर पार्षद अप्तगण। तो अनंत शिव जी प्रकट हुए, विरिंची ब्रह्मा प्रकट, ऋषिगण कई सारे प्रकट होते हैं। भागवत रूपे जन्म हईल सबा, सारे भागवत महाभागवत जो उच्च कोटि के भक्त, उनको भागवत कहते हैं। भगवान से जिनका घनिष्ठ संबंध है उसको भागवत कहते, भागवत ग्रंथ भी भागवत है, भक्त भी भागवत है और धर्म भी भागवत है। फिर विद्यापीठ भी भागवत विद्यापीठ भी होता है, भागवत भागवत प्रसाद भी, मतलब भगवान से संबंधित, रिलेटेड विद द लॉर्ड, तो वो भागवत कहलाता। तो कई सारे भागवत प्रकट हो गए। कारो जन्म नवद्वीपे कारो चाटी ग्रामे केह राढ़े ओढ़ देशे श्रीहट्ट पश्चिमे। तो अलग अलग पार्षद अलग अलग स्थानों पर प्रकट हो रहे हैं, उनके नाम दिए, कोई कोई बंगाल में, कोई उड़ीसा में, तो कोई श्रीहट्ट नाम का स्थान है, राढ़ देश में बलराम जी प्रकट हुए हैं, चाटी ग्राम, कई सारे, यह तो कुछ सैंपल कुछ नाम यहाँ दिए हैं, कई सारे नाम महाप्रभु के सारे परिकर। महाप्रभु जब हम कहते हैं तो चैतन्य महाप्रभु को हम क्या कहते हैं, महाप्रभु, बाकी सारे प्रभु है और चैतन्य महाप्रभु, तो महाप्रभु कहने से चैतन्य महाप्रभु समझना चाहिए। तो हुआ, तो महाप्रभु के पार्षद कई स्थानों पर प्रकट हुए। नवद्वीपे असी हैला सबार मिलन, और फिर चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए तो फिर वो सभी ने स्थानांतर किया, माइग्रेशन हुआ, तो धीरे धीरे जहाँ जहाँ वे जन्मे थे प्रकट हुए थे सारे आ गए, नवद्वीप आ गए महाप्रभु के लीला में प्रवेश करने के लिए, योगदान देने के लिए, उनकी अलग 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 भूमिकाएँ हैं वो निभाते, सारा फिर वर्णन ये चैतन्य भागवत चैतन्य चरितामृत में आ जाता है। त्रिभुवन हेन ग्रामन त्रिभुवने नाय, तो नवद्वीप जैसा स्थान सारे त्रिभुवन में ब्रह्मांड में नहीं है। यही अवतीर्ण हैला चैतन्य गोसाई, तो ऐसे नवद्वीप में चैतन्य गोसाई, गोसाई मतलब स्वामी, क्योंकि आगे अब भगवान सन्यास लेंगे। महाभारत में उल्लेख है भगवान के सन्यास ग्रहण करने का, तो सन्यास लेने वाले भगवान कौन है, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु है, तो उनको गोसाई का। नाना देश है ते लोक नवद्वीप जाय, नवद्वीप पड़ी ले से विद्या रस पाए। तो नवद्वीप एक बहुत बड़ा विद्वानों का स्थान, विद्यापीठ, नवद्वीप के पंडित बड़े विख्यात हुआ करते थे और संसार भर के विद्वान वहाँ के अध्ययन करते, पठन पाठन, और फिर वहाँ के और कहीं जाते थे, हाँ ये नवद्वीप के स्कॉलर फ्रॉम नवद्वीप का, नवद्वीप में अध्ययन किया, जैसे तक्षशिला और क्या जनाद ने नालंदा, ये जैसे विद्या के पीठ प्राचीन, तो नवद्वीप भी वैसे ही नवद्वीप का नाम था जहाँ साक्षात प्रभु प्रकट हुए। ओके, तो कुछ लोग तो अभी अभी भी आ रहे हैं, कुछ लोग जाने का भी सोच रहे होंगे। मुझे भी आदेश हुआ है कि बीबीटी में यहाँ है चैतन्य चरितामृत है, यहाँ पर हिंदी में बंशीधर प्रोग्रेस एकाध बोल तो चैतन्य चरितामृत भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट का चैतन्य चरितामृत है. नाउ वी डोंट हैव कॉपीज आउट ऑफ स्टॉक. या चैतन्य टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं करके भी ग्रंथ है, और भी कोई छोटे मोटे ग्रंथ हो सकते हैं चैतन्य महाप्रभु के. आप उसे खरीद लीजिए, उसे पढ़िएगा, चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं कथाएं और कथाएं. ये जमाना तो चैतन्य महाप्रभु का है, ये युग चैतन्य महाप्रभु का है. नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वशय नमः. तो भगवान महावदान्य कहलाए, और अब भी ये नहीं कि थे महावदान्य और अब वे नहीं है. वदान्य मतलब दयालु, महादयालु, महावदान्य. क्यों? कृष्ण प्रेम प्रदायते, उन्होंने कृष्ण प्रेम का वितरण किया, दान किया सर्वत्र, स्थान अस्थान नाही विचार, पात्र अपात्र नाही विचार. और जब वे दान करते प्रेम का, तो कौन से स्थान पर उसका वितरण करे, कहाँ नहीं करे, ऐसा सर्वत्र करते. किसको दे किसको नहीं दे, वो कंजूसी नहीं करते, या कुछ देते बांटते. सर्वत्र प्रचार हो बे मोर नाम, इसीलिए भी उन्होंने कहा पृथ्वी थे अछे जत नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार हो बे मेरो मोर नाम, मेरे नाम का प्रचार होगा, सर्वत्र प्रचार होगा. नोएडा में भी जब महाप्रभु ने कहा नगर आदि ग्राम, तो नोएडा न तो नगर था न तो ग्राम था, कुछ भी नहीं था, या खेती या पेड़ पौधे तो पशु पक्षी तो थे, लेकिन अब बस जो मंगल था उसमें अभी ये कंक्रीट का जंगल, जंगल में मंगल के बजाय हम लोग मंगल में जंगल, या मांगल्य था वह जांगल्य फैलाने हम लोग ऐसा. गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द मैस, मैस समझे. तो भगवान ने बनाया कंट्री साइड कंट्री सब, और मनुष्य अब क्या क्या बना रहा है, सारा तोड़ फोड़ का विनाश. Anyway, नगर बन गया तो नगर बन गया तो फिर महाप्रभु की भविष्यवाणी यहां पर भी पहुंच चुकी है, और उस नगर के कुछ नागरिकों के पास भी ये प्रभु की कथा, प्रभु का नाम पहुंच रहा है, प्रभु पहुंच रहे हैं. ये सारी भगवान की अहितों की कृपा का ही फल है। तो देख लीजिए, लूट सके तो लूट लीजिए, महाप्रभु का प्रेम का वितरण दान कथा नाम हो रहा है, और कुछ ही दिनों में अब गौर पूर्णिमा महोत्सव, फाल्गुन पूर्णिमा का दूसरा नाम गौर पूर्णिमा है। तो गौर पूर्णिमा भी विश्व भर में मनाई जाएगी, मायापुर नवद्वीप में तो मनाई जाएगी ही, जिसकान जहाँ जहाँ जिसकान आंदोलन चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन है, संकीर्तन ही कपितरो। ये संकीर्तन आंदोलन के फाउंडिंग फादर तो चैतन्य महाप्रभु ही है, और नित्यानंद प्रभु दोनों मिलके गौर नित्यानंद। तो उनका जन्म दिवस भी 8 तारीख को बृहस्पतिवार के दिन, यही समय सायंकाल के। तो बीच में 2 ही दिन शेष है, तो जैसे आज आए आप तो पधारिए, और 2 दिन भी साथ दीजिए, और यथासंभव और उनको भी पहुंचा सकते हो तो उन पर भी कृपा होगी, दया होगी। ये संसार तो जगाए मधाई से भरा हुआ है। आप जगाए मधाई को नहीं जानते होंगे, कुछ जानते होंगे तो भाई, वैसे थे जगदानंद और माधवानंद, ब्राह्मण परिवार के थे, लेकिन फिर धीरे धीरे बदमाश हो गए, बड़े दुष्ट हो गए चैतन्य महाप्रभु के समय। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कृपा की उन पर और उद्धार किया। तो देख लीजिए, फिर नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जाते थे, दोनों की प्रीचिंग टीम थी। चैतन्य महाप्रभु के आदेश अनुसार नित्यानंद प्रभु जो बलराम, और हरिदास ठाकुर ब्रह्मा, ब्रह्मा विष्णु महेश में से जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा और बलराम की प्रीचिंग टीम दोनों मिलके और प्रीचिंग पार्टनर्स थे। तो एक समय जब वे प्रचार के लिए गए थे तो उनका एनकाउंटर हुआ ये जगाए और मधाए दुष्टों के साथ, जो हाथ में बोतलें थी शराब की और मस्ती में थे। तो हरे हरे कृष्णा, तो उनका उद्धार गौर नित्यानंद किए हैं। तो महाप्रभु का आदेश, जारे दाखो त्यारे कहो कृष्ण उपदेश, अमार अज्ञाय गुरु हैया तारे देश। मैं कहते चैतन्य महाप्रभु कहते, जिस किसी के घर में भिक्षा प्राप्त करते, सन्यासी थे तो भिक्षा भिक्षाम देही, तो वहां रहते भी या वही भोजन करते, तो फिर उनको आदेश भी करते, अमार आज्ञा, हमारी आज्ञा से क्या करो, गुरु हैया तारे देश, इस देश में प्रदेश में तुम गुरु बनो, मेरा आदेश है। मैं कैसे गुरु बन सकता हूँ, व्हाट इज माय क्या क्वालिफिकेशन, नहीं, जा रहे देखो त्यारे कहो कृष्ण उपदेश। जिनको मिलते हो कृष्ण की कथा, कृष्ण का कुछ उपदेश, कुछ रिमाइंडर, या कम से कम पता, हम तो ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते, लेकिन वहाँ कुछ कहा जा रहा है नोएडा टेम्पल में, तो वहाँ तक तो आप आइए, वहाँ आगे सुनिए, या कुछ नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, महामंत्र को दे सकते हो। ओके, तो अब क्या होगा, तो हरे कृष्ण, कर तो सकते हैं, लेकिन पूछ रहे कि कल हम अनाउंस तो है 6 to 9, लेकिन तो 6 बजे तो छह ही लोग थे 6 बजे, तो
हरे कृष्णा। एक बार सभी गुरु महाराज जी का जो है जयकार करेंगे, परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज के, जगत गुरु श्री प्रभुपाद के, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के। तो आप सभी जो हैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की कथाओं का आनंद ले रहे हैं। आज कल 6 और परसों 7 और 8 तीन दिन का जो है और है, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारे। और जो है हम सोच रहे हैं कि टाइम जो है कौन सा सुइटेबल रहेगा, 6 से आरती करते हैं, 6:30 बजे समाप्त करते हैं, तो 6:30 बजे तक आप आ सकते हैं, तो फिर 6:30 बजे से चालू करते हैं, नहीं तो जो ये समय है 7 बजे का, तो फिर 7 से पे रखते हैं। कौन सा समय ठीक रहेगा आप सभी के लिए? 7 बजे, तो ठीक है, फिर तो टाइम तो यही 7 बजे का।
और
ठीक है,
कितने बजे जाना पसंद करोगे? भी
बंद कब करना चाहिए? 10 बजे,